नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पर विचार विमर्श के लिए संसद की 3 दिन की विशेष बैठक कल से शुरू होगी। वर्ष 2023 में पारित इस विधेयक को लागू करने के लिए सरकार 3 संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
यह विशेष बैठक संविधान में संशोधन करने के लिए बुलाई गई है ताकि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2029 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण अधिनियम को लागू किया जा सके। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा और राज्यसभा के सदन के नेताओं को पत्र लिखकर सभी पार्टियों से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह किया था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी यह आश्वासन दिया कि महिला आरक्षण विधेयक संतुलित है और यह हर राज्य समुदाय और क्षेत्र की आकांक्षाओं को ध्यान रखता है। भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी आर और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने दोनों सदनों के अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने और अपनी पार्टी के रुख का समर्थन करने का निर्देश दिया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विपक्षी दल महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में है, लेकिन विधेयक को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है उस पर आशंका है। नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद श्री खड़गे ने दावा किया कि विधेयक राजनीति से प्रेरित है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में नागरकोइल में भव्य रोड शो किया। भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने पर भाजपा चाय बागान श्रमिकों के कल्याण का पूरा ध्यान रखेगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में कहा कि भाजपा नेतृत्व आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बंगाल में वोट हासिल करने के लिए धन का दुरुपयोग कर रहा है। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि जनगणना 2027 का पहले चरण का अभियान कल से कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। यह अभियान 15 मई तक चलेगा, जिसके दौरान प्रशिक्षित गणनाकर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्र करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 860 अरब अमरीकी डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 व्यापार समझौते इस गति को और तेज करने के साथ नए बाजार खोल रहे हैं और सभी क्षेत्रों में व्यापक अवसर प्रदान कर रहे हैं। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार चौधरी और ब्रजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री होंगे। अन्य कैबिनेट मंत्रियों की सूची की घोषणा बाद में की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह और सामान्य प्रशासन सहित 29 विभाग रहेंगे। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने देशभर में घरेलू एलपीजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध लगभग समाप्त होने वाला है, क्योंकि ईरान के अधिकारी शांति समझौते पर सहमत होने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि वो सेना वापस बुला लेते हैं तो भी ईरान को देश के पुनर्निर्माण में 20 वर्ष लगेंगे। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहती है तो वो ओमान की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री व्यापार को भी अवरुद्ध कर देगा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 146 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु ने 15 ओवर एक गेंद में ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।